सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो यज्ञायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोसुदकेवलीमणिदम्। ये कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और उस समय सार के कर्ता कर्म अधिकार के हम 72 नंबर की गाथा को देख रहे हैं और इस 72 नंबर की गाथा में हमने आश्रव और आत्मा किस तरह जुदे जुदे हैं, एक नहीं है, दोनों के लक्षण अलग अलग है, ये बात हम देख रहे थे। तो यहाँ तो ये बात समझा रहे हैं कि जब तक कोई जीव आश्रव और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं करता है तब तक वह अज्ञानी ही है, और ज्ञानी जो है वह दोनों के लक्षण जानता है। और मुझे खातिरी आप सब लोग ज्ञानी हैं, तो आप आत्मा और आश्रव में जो भेद इस गाथा में बताए थे वो कौन बता पाएगा? आप बताएंगे? अच्छा, बहुत अच्छा, बोलो बोलो।
हाँ
हाँ, बहुत अच्छा। आत्मा अशुचि है, आत्मा आश्रव, अच्छा आश्रव अशुचि है, जड़ स्वरूप है और दुख का कारण है, और आत्मा कैसा है?
पवित्र है, न्याता है।
शरद भाई बता रहे हैं सुख स्वरूप है, बहुत अच्छा। आत्मा पवित्र है, चैतन्यमय है और सुख स्वरूप है। ये जो दोनों में जो तफावत है, यहां तो क्या कह रहे हैं कि देखो यह जो आश्रव यानी शुभ राग जो उत्पन्न होता है वह स्वयं पुद्गल है। क्यों? कि ना तो वह स्वयं को जानता है ना पर को जानता है, इसलिए ज्ञान का अंश उसमें नहीं है। और हमने तो पहले से देखते आए हैं रंग रूप या रंग राग और भेद ये सब आत्मा में है नहीं है, ये सब पुद्गलिक है। तो इसलिए यहाँ कह रहे कि उनसे जब जुदापन यह आत्मा जानेगा तो उसको भेद ज्ञान होगा, ये बात अपनी चल रही थी। अभी हम ये प्रवचन रत्नाकर भाग 4 के पृष्ठ क्रमांक 38 पर आए हुए हैं। ये जो नया पैराग्राफ चालू हो रहे ना तीसरे लाइन के बाद, यहाँ क्या समझा रहे देखो। धर्मी ने तो, यानी हमने पहले ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना देखी थी, तो यहाँ अभी धर्मी की यानी ज्ञानी की बात चल रही है। तो कह रहे धर्मी ने तो निरंतर भेद ज्ञान नो विचार रहे छे, यानी उसकी वह परिणति शुद्ध परिणति तो चालू ही रहती है। और उसमें क्या कहते हैं कि हूँ सदाय विज्ञान घन स्वभाव में छू, यानी ज्ञान में ही हूँ। वो ज्ञान कैसा है? विशेष ज्ञान है। वो विज्ञान कैसा है? घन स्वभाव में, घन स्वरूप है। ये घन इसको कहते हैं कि जिसमें कोई अन्य प्रवेश नहीं करे, ऐसा एकदम सॉलिड जिसको हम कहते हैं, तीनों बाजू से ऐसा है कि उसमें कोई अन्य बाहर की वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती है। तो वह घन स्वभाव में, ज्ञान विज्ञान घन स्वभाव में हूँ। आशुभ भाव रूप વિભાવો છે તે મારું સ્વરૂપ નથી એમ કોણ વિચારે છે? નિરંતર ધર્મી. કેમ કે તે બો એટલે શુભાશુભ ભાવો, અહીંયા તો શુભ ભાવ જડના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા છે અને સ્વપરને જાણવા સમર્થ નથી. માટે જડ અચેતન છે, ચૈતન્યથી અન્ન સ્વભાવવાળા છે. આવા ભેદ જ્ઞાનના બળે તે અંતરમાં સ્વરૂપ સ્થિરતા વધારીને અંતિમ લક્ષ્ય જે કેવળ જ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત કરી લે છે. દેખો યહાં ક્યા કહે રહે હૈ, હમ તો એસા માનતે હૈ કે કુછ નહીં હમે યે અભી યે ભાવ મેં તો હમે કુછ નહીં ચાહિયે. ક્યું સાહેબ, ક્યા કુછ નહીં ચાહિયે તો ક્યા ચાહિયે? નહીં, હમકો બસ સમ્યક દર્શન હોના ચાહિયે, હમે આત્માનુભૂતિ હો જાય તો હમ બહુત ખુશ. પણ ભાઈ સુનના હો, મુઝે માલુમ નહીં હૈ, લેકિન એક ઉદાહરણ કે લીએ, કિસી કે પાસ કુછ પૈસે નહીં હોતે હૈ, ફિર જરા વો બડા હો જાય, કમાયેગા, એક 5-50 કરોડ રૂપિયા જમા કરેગા, કમ કરું 5-25 લાખ લ્યો જાને ના, તો ઉસકે વો સંભાલને કી ચિંતા ઉસકી બઢતી હૈ કમ હોતી હૈ? આપકો શાયદ માલુમ હોગા. હા ક્યું? અરે જીતના અધિક પ્રાપ્ત કરેગા ઉસકી હાય હાય બહુત હોતી હૈ, ક્યા કરે કરે કૈસે કરે, યે તો હમે અનુભવ હૈ. હા અરવિંદભાઈ બરાબર હૈ ને? આપ સર્ટિફાઈ કરો તો હમ આગે બઢેંગે. વૈસા યહાં કહેતે હૈ કે જિસે આત્માનુભૂતિ હુઈ હૈ ઉસકો ઓર કેરફુલ રહેના ચાહિયે. ક્યા કે કિસી ભી હિસાબ સે યે જો મેને હાસિલ કી હુઈ જો બાત હૈ વો મેરે સે છૂટ ન જાય, એક બાત. ઓર દૂસરી બાત ક્યા, અભી ઉસકી ડબલ જવાબદારી હોતી હૈ કે ઉસમે હી ટિકે રહે હૈ ઓર અપને સ્વરૂપ મે અધિક 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 સ્થિર હો જાય. ઓર જેને કહેવાય છે ઊંડાણમાં જઈને આત્મામાં સ્થિરતા પામે. ક્યું? કે ઉસકો કેવલ જ્ઞાન ભી ઉસી રાસ્તે સે મિલને વાલા હૈ. દેખો યહાં લિખા હૈ, દેખો ક્યા કહેતે હૈ, યે નીચે સે તીસરી લાઇન હૈ. આવા ભેદ જ્ઞાનના બળે, તો એ સાધન કોણ સા હૈ? ભેદ જ્ઞાન. તે અંતરમાં સ્વરૂપ સ્થિરતા વધારીને, તે જે વધારે જ નહીં તો ચોથાથી પાંચમાં જાય નહીં. હા તો કહે કે વધારીને અંતિમ લક્ષ્ય જે છે જે કેવળ જ્ઞાન તેને પ્રાપ્ત કરી લે છે. યાને ઉસકી જવાબદારી બઢ ગઈ કે નહીં? ખ્યાલ મેં? તો હમ તો સમજતે કે ભાઈ બસ કુછ નહીં કુછ નહીં. અરે કુછ નહીં નહીં, તુને તો બહુત બડી સંપત્તિ ધારણ કી હૈ, અલૌકિક નિધિ તુને પ્રાપ્ત કિયા હૈ, ઓર ઉસકો સંભાલના તેરા ફર્જ હૈ.
દેખો પહેલી લાઈન મેં લિખા યહાં, ધર્મી ને તો નિરંતર ભેદ જ્ઞાન નો વિચાર રહે છે. નિરંતર કહા તો એસા એક કલશ આતા હૈ ઇસમેં સમયસાર મેં, કે ભાવેદ ભેદ વિજ્ઞાનમ ઇદમ અચ્છિન્ન ધારયા. અચ્છિન્ન ધારયા ને નિરંતર, વો ધારા કભી તૂટતી નહીં હૈ. કબ તક? તો તાવત યાવત પરાચ્યુત્વા જ્ઞાનમ જ્ઞાને પ્રતિષ્ઠતે. યાને પર સે હટકર જ્ઞાન પૂર્ણ રૂપ સે અપને મે હી જબ તક લીન હો જાતા હૈ, યાને કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોતા હૈ. યાને ભેદ જ્ઞાન સે હી સમ્યક્તો કી પ્રાપ્તિ હોગી, ભેદ જ્ઞાન સે હી મુનિપના હોગા, ઓર ભેદ જ્ઞાન સે હી કેવલ જ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ હોગી. યાને ભેદ જ્ઞાન હી એ નિરંતર ધ્યાને યોગ્ય હૈ, ઉસકી ભાવના કરને યોગ્ય, યે બાત યહાં બતાતે. ઇસલી નિરંતર ભેદ જ્ઞાન નો વિચાર રહે છે એસા લિખા ઉસમે. ये 130 नंबर का कलश है समय सार.
यहाँ क्या समझा रहे देखे, अहो भेद ज्ञान नो कोई अपूर्व महिमा छे. भेद ज्ञान ना भावे अज्ञानी अनंतो संसार वधारे छे. यानी क्या कह रहे हैं कि उसको निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ऐसा उसका संसार परिभ्रमण चालू ही રહેગા. વો 10-5 કી બાત નહીં કહે રહે, અનંત. ક્યું સાહેબ, એસા ક્યા કરે, કિતના કાલ જાયગા? બહુ જાયગા, ક્યુંકિ અગર વો એકેન્દ્રીય પર્યાય મેં જાયગા તો ફિર અનંત કાલ તો રહે નહીં હૈ વહાં ઉસે. ક્યા કહેતે, वहां से भी निकलेगा लेकिन परिणाम सुधारे तो अब कह रहे हैं अबे त्रीजो बोल कहे छे के आश्रवो आकुलताना उपजावनारा हुआ थी दुखना कारणों छे पुण्य पापना भाव बनने आकुलता उपजावनारा छे। देखो यहाँ दोनों को लिया हो आश्रव पहले लिखते हैं स्वामी जी उसको स्प्लिट करके पुण्य पाप दोनों को पकड़ते हैं। क्यों कि हमें तो पाप से बहुत डर लगता है और पुण्य से बहुत प्रेम है। हाँ पुण्य से मैं जुदा हो जाऊं ऐसा कभी भी नहीं लगता इसलिए बार बार समझा रहे हैं कि पुण्य पाप ना भाव बनने आकुलता उपजावनारा छे। अरे इसी समय सार में आगे ऐसा बताएंगे पुण्य पाप अधिकार के इसमें कि पुण्य और पाप बनने चांडाणी ना पुत्र छे। ख्याल में तो भले ना कोई एकाद एकाद दीकरो बीजे क्या एक ब्राह्मण ना घरे उछरियो हो पण छे तो चांडाणी नो पुत्र ऐसा उसमें लिखा। क्या कहते हैं बन्ने आकुलता उपजावनारा छे आ दयादान आदि शुभ भाव जे थाय ते आकुलता उपजावनारा छे आकरी वात भाई पण ते एम ज छे जे भावती तीर्थंकर नाम कर्म बंधाय ते भाव आकुलता उपजावनारो होवाथी दुखनु कारण छे एम अहीं कहे छे। भाव पाहुड़मां शुभ भावनी व्यवहारनी घणी वातो आवे छे आवी भावना भावता तीर्थंकर गोत्र बंधाय इत्यादि घणा बोल छे 25 प्रकारनी भावना अने 12 प्रकारनी भावना एम घणा प्रकारे त्यां वात करेली छे। ए तो स्वभावनी दृष्टि होवा छता पूर्ण वितराग न थाय त्या सुधी भूमिका अनुसार धर्मी जीव ने शुभ भाव केवा प्रकारनो आवे छे तेनु त्यां ज्ञान करायवुं छे। क्यां त्यां ने भाव पाहुड़मां अशुभ भाव आवे तो शुभ भाव केम ना आवे। क्या कहते हैं देखो निगोदिया जीव निगोद में क्यों बार बार रहता है तो अशुभ भाव आवे तो त्यांथी पण बाहर निकले ने तो शुभ भाव पण आवे तो कहे के अशुभ भाव आवे तो शुभ भाव केम नहीं आवे बन्ने आवे ये करवा नहीं पड़े थई जाय छे। कहे छे अशुभ भाव आवे तो शुभ भाव केम ना आवे अनेक प्रकारना शुभ भाव ज्ञानी ने आवे छे पण ते आकुलता उपजावनारा छे एम आई कहे छे। अभी अपना जो चालू विषय है उसमें इन आश्रवों को शुभ या अशुभ भावों को आकुलता को उपजावने वाले हैं ऐसा कहने में आ रहा है। अतिचार रहित निर्दोष व्रत पाड़वा दयादान भक्ति इत्यादि करवा एम व्यवहारना कथन शास्त्रों में अनेक प्रकारे आवे पन ए तो भूमिका प्रमाणे धर्मी ने जे शुभराग आवे छे आव्या विना रहता नथी एनी ए बात छे। देखो भाई बात तो ऐसी है ना चरणान योग में भी जो भूमिका के अनुसार जिस जिस जीव के जो परिणाम होते हैं उसका यहाँ वर्णन होगा और ऊपर से ऐसा भी कहेंगे कि आपको ग्रहण करना है ग्रहण करवो अभी आ गया ना चरणन योग चुलिका में ग्रहण करवा जेवा छे यानी वो ऐसा नहीं समझा रहे हैं कि तुमको ग्रहण करना है ग्रहण करो तब भी नहीं और बहुत जगह से ऐसा कहेंगे 28 मूल गुण इस तरह पालन करो तो उससे लोगों की ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ तो मुनियों को क्या करना चाहिए बता रहे वैसी बात नहीं है। तो मुनियोग्य भूमिका में जीवों के कैसे परिणाम होते हैं उसका दिग्दर्शन है वहां और हम क्या समझते हैं नहीं 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 चार हाथ जमीन देख के चलना हाँ ऐसा करेंगे तो हम मुनि हो जाएंगे ऐसा नहीं है। मुनि होने के लिए तो स्वरूप में स्थिरता रूप जो सकल चारित्र की प्राप्ति होती है वो होगी तो बाह्य में ऐसे भाव सहज आएंगे। तो इसलिए कहते हैं ये सारा जो कुछ है भूमिका अनुसार आवे पन सारे वो कैसे हैं आकुलता को उपजाने वाले हैं अने शांति ने रोकनारा छे उससे आकुलता हो रही तो निराकुलता कहां से होगी। પદ્મનંદી મુનિરાજ વનવાસી મુનિ હતા તેવો દાન અધિકારમાં કહે છે કે તારી શાંતિ દાજીને આ શુભ ભાવ થયા છે. એ કલા અમને પઢાતા સ્વામીજી કે લેક્ચર મેં વહી બાત બિલકુલ વર્ડ ટુ વર્ડ વેસા હે દેખો કે તારી શાંતિ દાજીને આ શુભ ભાવ થયા છે. કેમ શાંતિ દાજીને? કે તું સ્વરૂપમાં લીન થા તો તને શાંતિનો અનુભવ થશે. સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ શુભ ભાવમાં અટકશે તો તારી શાંતિ દાજી ગઈ છે એમ કે છે. તેને લઈને જે પુણ્યરૂપી ઉકડિયા બંધાયા તેના ફળમાં આ 5-50 લાખની ધૂળ સંપત્તિનો સંયોગ તને દેખાય છે. એ જબ કહે લિખ રહે ના તબ તો 5-25 લાખ કુછ માયના રખતે થે. ઓર સ્વામીજી તો ઉસ સમય માન લો ના 90 સાલ કે હોંગે તો ઉનકે પહેલે જમાને મેં જબ વો દુકાન પે બેઠતે તો દો આને કા ધંધા હો ગયા તો આજ બહોત હો ગયા એસા હોતા થા. તો ઉનકે લિયે 5-25 લાખ તો બહોત હો રહે. ઓર આજ 5-25 લાખ તો કિસકે પાસ નહીં હૈ. તો ઇસલિયે મેને 25 કરોડ બોલા ક્યા. તો કહેતે હૈ 5-25 લાખની ધૂળનો સંયોગ તને દેખાય છે. તેને જો સારા ધાર્મિક કાર્યોમાં ઉપયોગ ન કર્યો તો તું કાગડામાંથી પણ જઈશ. કેમ કે કાગડો પણ એને મળેલા દાજેલી ખીચડીના ઉકડિયા એકલો ખાતો નથી, પણ કા 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 એમ પોકારી 5-25 કાગડાઓને ભેગા કરીને ખાય છે. આવા કથન શાસ્ત્રમાં આવે છે. એ પદ્મનંતી 25 જો હૈ ના ઉસમે યે બાત ઉન્હોને લિખી પદ્મનંતી મહારાજને. તો વો સ્વામીજી બતા રહે ત્યાં લોભાદી અશુભ ભાવ ઘટાડીને શુભ ભાવ કરવા પૂરતી વાત છે, પણ એ છે તો દુઃખરૂપ જ. તો એ શુભરાપ કરવા એમ કેમ કહ્યું? ભાઈ કરવાની તો વાત જ નથી, પરંતુ એ તો ઉપદેશની શૈલીનું કથન છે. વાસ્તવમાં તો અશુભથી બચવા ધર્મી જીવને એવા શુભ ભાવ યથાસંભવ આવે છે એ કરતા નથી હો, એ સમજી લેજો. એ યથાસંભવ આવે છે એનું ત્યાં જ્ઞાન કરાવ્યું છે. જેને શુદ્ધ નિશ્ચયને એનું ભાન વર્તે છે પણ સ્વરૂપમાં ઠરી શકતો નથી એને અશુભથી બચવા એવા શુભભાવ આવે છે, બલકે આવ્યા વિના રહેતા નથી. પરંતુ એ શુભભાવ આત્માની શાંતિને ધજાડનારા છે, દુઃખના કારણ છે એમ અહીં આચાર્ય દેવ કહે છે. ભગવાન કુંદકુંદ આચાર્ય દેવ સમયસારની પહેલી ગાથામાં કહે છે કે હે શ્રોતાઓ, હું તમને સમયસાર કહીશ. પાંચમી ગાથામાં કહે છે કે એકત્વ વિભક્ત આત્માને બતાવવાનો મેં વ્યવસાય કર્યો છે, એટલે હું ઉદ્યમી થયો છું. વ્યવસાય એટલે બિઝનેસ કરું છું એ નહીં વાતો. તેને તું સાંભળીને અનુભવથી પ્રમાણ કરજે. જ્યારે પરમાત્મા પ્રકાશમાં આવે છે કે દિવ્ય ધ્વનિથી જ્ઞાન ન થાય. જુઓ આ સત્ય સિદ્ધાંત છે, છતાં સાંભળવા અત્યારે આ સાંભળવા આવે ત્યારે જ્ઞાનીઓ શ્રોતાને શિષ્યને એમ કહે કે સાંભળ, હું તને ધર્મકથા સંભળાવું છું. ધવલમાં પણ આવે છે કે સુણ, આ શબ્દનો ત્યાં વિસ્તારથી અર્થ કર્યો છે. જુઓ એક બાજુ એમ કહે કે ભગવાનની વાણીથી લાભ ન થાય અને બીજી બાજુ એમ કહે કે અમે કહીએ છીએ તે સાંભળ. વળી કેટલાક એમ કહે છે કે કથની કાંઈક અને કરની કાંઈક, એટલે કે કાર્ય ઉપાદાનથી થાય એમ કથની કરે અને નિમિત્ત વડે ઉપાદાનમાં લાભ થાય એવી કરણી કરે. એમ કે લાખોનું મંદિર બંધાવે, ઘણા માણસોને ભેગા કરી ઉપદેશ આપે અને કહે કે કાર્ય ઉપાદાનથી થાય નિમિત્તથી ન થાય, એટલે તમે પૈસા આપ્યા તેથી એ થયું નથી એમ કહે છે. તો પૈસા આપવાવાળાને દુઃખ લાગે ને, તો એ આમ પેટમાં જળે બળે તો આવું કે શું કે લાખોનું મંદિર બંધાવે પણ ઘણા માણસોને ભેગા કરીને પાછા ઉપદેશ આપે, શું કે એ જે કાર્ય થાય છે તે ઉપાદાનથી થાય છે, હા, તે પૂતગલના પરમાણુઓની એવી રીતે પરિણમન કરવાની યોગ્યતા હતી. પાછું એમ સમજાવે કે આ જે કોતરેલું છે એ કારાગીરે કે મશીને કોતરેલું નથી, એ તો પૂતગલની એ રીતે પર્યાય થવાની હતી તે થઈ છે. તો પેલો કારાગીરી મરી જાય, ભાગી ભાગી જાય કે આ કઈ મને કઈ. વસ્તુ સ્થિતિ ના સમજે ને એટલે તકલીફ થાય. નિમિત્ત ન થાય, આ કેવી વાત. અરે પ્રભુ, અભી ઉસકા ઉત્તર સ્વયં હિ પ્રશ્ન ઉઠા રહે હૈ ઓર સ્વયં હિ ઉસકા ઉત્તર દેતે હૈ. અરે પ્રભુ, તારી સમજણમાં ફેર છે. ઉપાદાન અને નિમિત્ત બંને સ્વતંત્ર સ્વયં પોતપોતાનું કામ કરે છે. એટલે નિમિત્ત ઉપાદાનનું કાર્ય કરે કે ઉપાદાન નિમિત્તનું કાર્ય કરે એમ નથી, કેમ કે નિમિત્ત અને ઉપાદાન મેજોરિટીવલી ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યોમાં હોય છે અને પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનાદિથી છે અને એનું પરિણમન એનાથી થાય છે, બીજાથી થાય એમ નથી. પણ બંને એક સાથે થાય ત્યારે એકબીજાને નિમિત્ત છે એમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ થાય તો ઉપાદાનથી જ એમ સમજાય છે. એટલે કહ્યું, ઉપાદાન અને નિમિત્ત બંને સ્વતંત્ર સ્વયં પોતપોતાનું કામ કરે છે, કોઈ કોઈને આધીન નથી. આ તો સિદ્ધાંત છે. અને ધર્મીને યથાક્રમ ઉપદેશનો રાગ આવે અને શિષ્યને તે સાંભળવાનો વિકલ્પ હોય, આવો ભૂમિકાનુસાર યથાસંભવ શુભરાગ એટલે વ્યવહાર આવતો હોય છે. પણ એકથી બીજાનું કાર્ય થાય એમ નહીં. આય કહે છે કે આજે ભગવાનની વાણી કહેવાનો કે સાંભળવાનો વિકલ્પ છે તે આકુળતા ઉપજાવનારો છે. ક્યા કહેતે હૈ શરદભાઈ? અહીંયા જે સાંભળવાના આવવાનો જે વિકલ્પ છે એ આકુળતા ઉપજાવે છે એમ કે છે. ભાઈ આવી વાત છે હો, ને આ લોકો અહીંયા દૂર દૂરથી આવે છે, હા, એ પણ એમને આકુળતા છે સાંભળવાની, એટલો તો આવે છે. હા, ક્યા કહેતે હૈ કે આ જે નીચેથી ફોર્થ લાઈન છે, વચ્ચે છે, જે ભગવાનની વાણી કહેવાનો કે સાંભળવાનો વિકલ્પ છે, હા, એટલે ભગવાનને જે કહ્યું છે એ જ વાત શાસ્ત્રોમાં કહેવાની અને બીજાને સાંભળવાની. ભગવાનની વાણી કહેવાનો વિકલ્પ, વિકલ્પ ભગવાનને હોય કે નહીં? હા નલિનભાઈ, ન હોય. પછી અહીં લખ્યું છે ને, જો આ જે ભગવાનની વાણી કહેવાનો કે સાંભળવાનો વિકલ્પ છે તે ભગવાનની વાણી આચાર્ય દેવ કહે છે કે અત્યારે આપણે વાંચીએ છીએ સાંભળો, એ જે રાગ છે વિકલ્પ છે એ પણ દુઃખદાયક છે એમ કે છે. તે આકુળતા ઉપજાવનારો છે. બાપુ, આ કાંઈ ખેંચતાણનો માર્ગ નથી, આ તો સત્યને સમજવાનો માર્ગ છે. જ્યાં જે અપેક્ષા હોય તે અપેક્ષા બરાબર સમજી અર્થ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. આશ્રવો આકુળતા ઉપજાવનારા હોવાથી દુઃખના કારણો છે અને ભગવાન આત્મા તો સદાય નિરાકુળ સ્વભાવને લીધે કોઈનું કાર્ય તેમજ કોઈનું કારણ નહીં હોવાથી દુઃખનું જ કારણ છે, દુઃખનું જ અકારણ છે. હા, દુઃખનું અકારણ જ છે. ઉલટા હો ગયા. ત્યાં તો પહેલે આશ્રમ કે સાથ સાથ ત્યાં આત્મા કી બાત બતા રહે. જો શુભ ભાવથી સ્વર્ગ મળે અને અશુભ ભાવથી નરકાદી મળે, પણ બંને ભાવ છે તો બંધ રૂપ જ, દુઃખ રૂપ જ. તેથી પુણ્ય ભાવ છોડીને પાપમાં પ્રવર્તવું એમ વાત નથી, પરંતુ પુણ્યભાવ કરતા કરતા ધર્મ થશે એમ કોઈ માને તો તે યથાર્થ નથી. પુણ્યભાવ પણ દુઃખરૂપ જ છે એમ યથાર્થ સમજવું, દુઃખનું કારણ નથી એવો તો એક ભગવાન આત્મા જ છે. આહા, ભગવાન આત્મા ચિદાનંદ પ્રભુ સદાય ત્રણેકાળ નિરાકુળ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ કેવો છે આત્માનો? કે નિરાકુલ જ છે એમ. એ કોઈનું कारण नथी अने कोई नु कार्य पण नथी, ये क्या समझाना चाहते इसके मार्फत से? ये भगवान आत्मा है, ये कोई नु कारण नथी ने कोई नु कार्य पण नथी, यानी क्या समझाना चाहते, कौन बताएगा? हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं आप, बराबर कह रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। यहाँ क्या लिखते हैं, आत्मा जे छे ए कोई नु कारण नथी, यानी परद्रव्य का परिणमन करने वाला आत्मा नहीं है, इसके कारण से परद्रव्य का परिणमन होवे ऐसी बात नहीं है, एक बात। तो दूसरी बात क्या कहते हैं, ए कोई नु कार्य नथी, यानी आत्मा किसी ने क्रिएट किया है, उसका उसको उत्पन्न किया है, ऐसी बात नहीं। वह ना किसी का कारण है, या अन्य किसी को उपजा सकता है, या किसी को जन्म दे सकता है, या किसी का कोई कार्य करा सकता है, ऐसी भी बात नहीं। और वो दूसरा, हाँ जी, आत्मा स्वयं सिद्ध है। हाँ जी, लगेगा ना? देखो देखो, आत्मा किसी की उत्पत्ति नहीं है, और आत्मा अन्य किसी उत्पत्ति में कारण भी नहीं है। अभी मुझे ये बताओ, अभी हम जो भगवान कहते हैं तो वह भी तो आत्मा है कि नहीं? तो वह भी किसी के कारण नहीं है, उनके कारण से कोई उत्पन्न हुआ नहीं है, ये भी तो बात आ गई ना साथ में। तो क्या है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं सिद्ध है, सिर्फ आत्मा नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वयं सिद्ध है। भाई यहां तो हमने 47 शक्ति में अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति आत्मा की देखी है, पर वो तो सामान्य गुण है, सब द्रव्य में है, नहीं तो आत्मा कोई नहीं बनाया है और आत्मा ने सारों को बनाया, ऐसा भी नहीं। कार्य शक्ति है वो, दूसरा कोई उसका कार्य भी नहीं हो सकता है, ना वह किसका अन्य का कार्य हो सकता है, दोनों तरफ से लेना। क्या कह रहे, देखो कहाँ आए थे मनु? पहला पैराग्राफ, मैं सेकंड पैराग्राफ के नीचे देख रहा हूँ क्या लिखा, देखो, ए कोई नु कारण नथी ने कोई नु कार्य पण नथी। यहाँ तो आत्मा की बात चल रही ना, तो आत्मा की ही बताएंगे, लेकिन हमें तो बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आत्मा किसी से नहीं बना है, या आत्मा किसी को नहीं बनाता है, तो फिर वो पुद्गल को कौन बनाया, धर्म द्रव्य को कौन? अरे नहीं भाई, सभी द्रव्य अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है आपकी भाषा में। तो बात तो ये है कि जैसा आत्मा है ऐसे अन्य द्रव्य भी है। आहा, आत्मा मा एक अकार्य कारणत्व नामनी शक्ति छे, आ शक्ति ना कारणे आत्मा अन्य नु कार्य नथी। एटले आत्मा अनाकुण आनंद नो नाथ प्रभु कोई थी उत्पन्न नथी, एवो स्वतः सिद्ध छे। देखो ये दोनों बातें यहाँ लिखी है, स्वतः सिद्ध भी लिखी है, आपने स्वयं सिद्ध कहा, और आपने अकार्य कारणत्व कहा, वो भी यहाँ लिखी है। वही आशक्ति ना कारणे आत्मा कोई नु कारण नथी, एटले पुण्य पाप आदि भावों ने आत्माए उत्पन्न कर्या नथी, कर्या छे एम नथी, उसका अर्थ नथी। आहा, पर्याय मां जे राग थाय, पुण्य पाप ना भावो थाय, एनु आत्मा कारण पण नथी अने कार्य पण नथी। जैन तत्व मीमांसामां आवे छे के उपादाननी जे उपादेय पर्याय थाय छे ते पूर्वना कारणना लक्ष्यती थाय छे, के पूर्वना कारणना क्षयती थाय छे, त्या एम लीधुं छे के। ये ऐसा क्यों होता है मेरी समझ में नहीं आता है, जो लिखा है वो नहीं पढ़ता हूं मैं, ત્યાં એમ લીધું છે કે ઉપાદાન કારણ વર્તમાન અને એનું કાર્ય તે પછીની ઉત્તર પર્યાય પણ આ વ્યવહારથી વાત કરી છે। દેખો હમને ઇસ તરહ સે સીખા થા અનંતર પૂર્વ ક્ષણવર્તી પર્યાય યહ કારણ ઓર અનંતર ઉત્તરવર્તી પર્યાય વહ કાર્ય, લેકિન વો કૈસા હૈ યે તો વ્યવહાર સે કહા જાયેગા, निश्चय से क्या है कि अभी वर्तमान में पूर्व पर्याय का व्यय जो हुआ है वह कारण और उसी समय जो नई पर्याय उत्पन्न हो रही वह कार्य, ऐसे सहित का द्रव्य, वो निश्चय की बात है। और यहां क्या कहा है कि पूर्व पर्याय कारण है और उत्तर पर्याय कार्य है। वहां जो लिखा है ना जैन तत्व मीमांसा में, ये बात
जैन तत्व मीमांसा किसने लिखा है मालूम? हाँ, फूलचंद जी शास्त्री। और यहाँ लिखा है ना उपादान की जो उपादेय पर्याय, उसका अर्थ क्या है? यहाँ लिखा क्या लिखा है? उपादान नी जे उपादेय पर्याय थाय छे, देखो द्रव्य में जो पर्याय होती है, किसी भी पर्याय में दो कारण लगते हैं, एक उपादान और एक निमित्त। कार्य तो एक ही हुआ है, उपादान की तरफ से उसी पर्याय को उपादेय कहेंगे और निमित्त की तरफ से उसी पर्याय को नैमित्तिक कहेंगे। इसलिए यहाँ उपादान नी पर्याय नो उपाधि, उपादान नी जे उपादेय पर्याय थाय छे, ऐसा लिखा ना यहाँ। ते पूर्वना कारणना क्षयति थाय छे। ये तो ये व्यवहार की भाषा है कि पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और ये पर्याय उत्पन्न हुई, तो वहां व्यय को कारण कहा है, पूर्व पर्याय को भी कारण कहा, ऐसा भी आता है उसमें। तो आगे लिखते ये व्यवहार व्यवहार कारण है, व्यवहार थी बात। बाकी तो हाँ
बोल, बोलना है तो बोलो।
नहीं नहीं आगे लिखा है ना,
देखो वहां पर क्यों ऐसा बताया कि व्यवहार नहीं बात छे, क्योंकि निश्चय से तो प्रत्येक पर्याय ही अपना स्वयं का कर्ता कर्म वगैरह वगैरह सब उसमें लगता है, लेकिन एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य करता है ऐसा कहना यह व्यवहार है। भेद किया ना उधर, यहां उन्होंने जो जैन तत्व मीमांसा में उपादान पूर्व पर्याय को लिया है और उपादेय उसके आगे की पर्याय यानी वर्तमान पर्याय को लिया। निश्चय से अभी मैंने बताया ना कि एक समय में क्या होगा कि पूर्व पर्याय का व्यय सहित का जो द्रव्य है वह है कारण और अभी वर्तमान में जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसके सहित वाला जो द्रव्य है वह कार्य। ये निश्चय से हाँ, जो हमने उस समय की योग्यता जिसको हम कहते हैं ना वो निश्चय, यानी हाँ देखो यहाँ पर ये जो बात बता रहे हैं ना जैन तत्व मीमांसा में फूलचंद जी शास्त्री जो बात कह रहे हैं हाँ व्यवहार वाले, तो अभी हम क्या कहेंगे कि जो पर्याय उत्पन्न होती है वो स्वयं से होती है ना, तो वह उसका उपादान भी स्वयं है, यानी कर्ता स्वयं है, कर्म स्वयं है, साधन स्वयं है, इस तरह से लेंगे तो वही उपादान है। और उसके लिए ये एक समय की जो पूर्व पर्याय में जिसका व्यय हुआ है उसको निमित्त कारण कहेंगे।
वो तो उपादान में, उपादान के तीन भेद है ना, त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान में भी दो भेद कहे, तो पूर्व पर्याय को भी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय होकर ये हुई, तो वहां उसको भी उपादान में गिनाया है, परंतु वो व्यवहार से है। तो निश्चय से क्या है, उसी समय में उसी पर्याय पर घटित होगा वो उपादान और उपादेय। देखो उपादान में तीन भेद है, त्रिकाली उपादान तो वो द्रव्य की निज शक्ति कहलाएगी, पर द्रव्य में शक्ति है तो हर समय वो कार्य क्यों नहीं प्रकट हुआ? सम्यक दर्शन की शक्ति है हमारे में तो कार्य क्यों नहीं, अनादि से मिथ्या तो दशा क्यों है? तो उसमें वो क्षणिक उपादान की बात है, क्षणिक उपादान है, वो पर्याय उसी समय में वैसे ही उसी काल में होगी और उस विशिष्ट पूर्व पर्याय का क्षय होकर ही होगी।
इसलिए वहां पूर्व नंबर की पर्याय में कार्य हुआ है तो जब तक नौ नंबर की पर्याय नहीं आ रही तब तो कार्य होगा ही नहीं, अब नौ नंबर की पर्याय पर आए तब अभी आगे की बात सुनो।
इसलिए त्रिकाली उपादान को तो मूल में कारण रूप स्वीकार किया ही, अब कहते विशिष्ट पर्याय के व्यय पूर्वक ही ये कार्य होगा, इसलिए वो पूर्व पर्याय को भी कारण में गिना है बहुत जगह द्रव्य संग्रह में, तो उसी को उपादान रूप से स्वीकार किया बार बार। फिर भी वो तो व्यय रूप कारण कैसे होता है, अभाव रूप कारण कैसे हो सकता है, इसलिए क्या कहा वहां, ये भी व्यवहार में गिन लो। उसकी अपेक्षा भी निश्चय क्या होगा, तो उसी पर्याय पर घटित होगा। तो पर्याय अपनी निज शक्ति से उत्पन्न हुई है, वो उसका जन्म क्षण है, वो उसी का अपना षटकारक उसमें ही लगते हैं। वो ना द्रव्य से हुए, ना गुण से हुए, ना पूर्व पर्याय से हुए, बस उसपे हुए, ये बिल्कुल निश्चय कथन होगा। वहां त्रिकाली की अपेक्षा पूर्ववर्ती को हम निश्चय कहेंगे, उसको व्यवहार में डालेंगे। ये निश्चय व्यवहार जो है ना, पहले में पहले अन्य चीजों से लक्ष्य हटाने के लिए पहले निमित्त को वहां खड़ा किया, निमित्त को कारण कहा। क्यों? अन्य को निमित्त मान रहा था। जैसे हम मान रहे थे कि बच्चों ने मुझे गुस्सा कराया, तो वहां कहेंगे नहीं नहीं कर्म के कारण हुआ। तो अन्य चीजों पर से दृष्टि हटाकर निमित्त पर आए, फिर कहेंगे निमित्त वो तो सच्चा कारण नहीं है, वो तो द्रव्य में ही, वो अपनी निज शक्ति से हुआ है वो कार्य। तो फिर त्रिकाली उपादान को बताते, परंतु त्रिकाली उपादान तो हमेशा है, तो कार्य क्यों नहीं होता? तो विशिष्ट पर्याय के अभाव पूर्वक होगा, इसलिए त्रिकाली उपादान को वहां व्यवहार कहेंगे, और उसकी अपेक्षा से पूर्ववर्ती पर्याय को वो निश्चय वाला कारण कहेंगे। अब पूर्ववर्ती पर्याय को और वर्तमान पर्याय को इसमें लगाना भी, तो उसको व्यवहार में डालेंगे।
हाँ। पर्याय में से पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए उसको भी हटा दिया, जिसको हम अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय जो कह रहे हैं ना, तो व्यय यहाँ लिया, वो उसको निमित्त में डाला अभी।
नहीं, उपादान कहो, उसको निमित्त मत कहो।
पहले जब हम उस समय की योग्यता पर आएंगे,
उसको व्यवहार कहो, निमित्त मत।
अच्छा, हाँ। व्यवहार करो तो निमित्त तो व्यवहार ही होता,
निमित्त तो परद्रव्य में ही चला जाएगा,
वो तो बाह्य निमित्त की बात है। अब कैलाश चंद को निकाल के देखो, देखो उसको निमित्त में डाला, और जो तत्समय की योग्यता वह उसका उपादान है। तो वो तो जब हम उसको भेद करके समझाएंगे तो इसी तरह समझाएंगे, और जो और उससे जो बिल्कुल निश्चय है वह तो वही तत्समय की योग्यता ही।
व्यवहार उपादान, व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय, इस तरह से जिसको हम पूर्व में जिसको हमने उपादान कहा वो तो फिर व्यवहार में चला जाएगा, अगला वाला जो उसको तो निश्चय में ले लेंगे।
तो जिसमें हमने षटकारक लगाए उस समय की योग्यता में, वो तो निश्चय से वही हुआ,
निश्चय हो जाएगा।
ख्याल में है डॉक्टर साहब? प्रश्न, निमित्त थी कहीं थतु न थी तो आप समय सार शुकाम वाचो छो, पद्म पुराण वाचो ने
का वाचन दोन ओरी
नहीं हो गया,
दोन ओरी दोन,
चलो ऊपर चलो। हाँ, देखो चैन कहाँ से चलेंगे,
हालून तीसरी चौथी ओर,
बाकी तो समय समय नु उपादान स्वयं सिद्ध पोताती छे, ये आ गई ना बात। निमित्त ना कारणे नहीं, पूर्व ना एटले पूर्व पर्याय ना कारणे नहीं, अने पोताना द्रव्य गुण ना कारणे पण नहीं। यहाँ किसको किसको हटाया, द्रव्य को हटाया, गुण को हटाया, एक समय पूर्व की पर्याय को भी हटाया, और कहते अपना जो उस समय की योग्यता जो है उसको लिया। चलो बहुत अच्छा,
इन्हें निमित्त लिया, अनंतर पूर्व पर्याय ली, और त्रिकाली उपादान लिया, ये तीनों से नहीं होता ऐसा कहा।
अहो आवु सत स्वयं निज समृद्धि थी भरेलू छे, कोने प्राप्त था जे समझे ते नियम के छे। प्रश्न, तो प्रश्न करता कोई बात समझ में नहीं आई ना, इसलिए उसने प्रश्न पूछा कि निमित्त थी कहीं थतु न थी तो आप समयसार सुकम वाचो छो, पद्म पुराण वाचो ने, समयसार ना निमित्त थी कहीं विशेष लाभ छे एम अच्छे ने। वो तो इस दृष्टि से पूछ रहे हैं कि समयसार तो उन्होंने आद्योपांत 18 बार तो पूरे मतलब प्रवचनों में मतलब सबके लिए भांचा था, एक बार नहीं दो बार नहीं 18 बार, तो उनके स्वयं का निजी स्वाध्याय में तो कितनी बार पढ़ा होगा। तो आप इतनी बार पढ़ रहे तो आपको कुछ लाभ होता है, यानी निमित्त से लाभ होता है, इसलिए तो आप पढ़ रहे ना, तो दूसरा क्यों नहीं पढ़ते भाई, ऐसा पूछा उनको। ये पूछने वाले भी राम जी भाई है, अन्य कोई ऐसा धाड़स नहीं कर सकते। भाई एम नथी, वाचती वक्ते के सांभळती वक्ते जे ज्ञाननी पर्याय थाय ते पोताने लईने स्वयं पोताती थाय छे, निमित्तने लईने नहीं, ज्ञाननी पर्यायना उत्पादनो स्वकाळ एनी निजक्षण छे, एटले ते पर्याय स्वतंत्रपणे पोताती उत्पन्न थाय छे। यानी ये समयसार पढ़ने से तुम्हारे ज्ञान में फर्क हुआ ऐसा नहीं, आपके ज्ञान में इसी तरह का परिणमन होना था, तब यह समयसार का जो कोई कथन चल रहा होगा वह निमित्त तो हुआ, बस इतना ही। क्या अश्विन भाई बात समझ में आई क्या? नहीं देखो फिर से, जब उनको प्रश्न पूछा गया कि भाई आप समयसारी क्यों पढ़ते हो, तो वो क्या कह रहे हैं, अभी हम अपनी भाषा में समझेंगे कि दिव्य ध्वनि से ज्ञान होगा कि नहीं, हा? शास्त्र पढ़ने से तो ज्ञान कहां से होगा? ज्ञान ज्ञान से होगा, लेकिन जब ज्ञान का ज्ञान रूप कोई, मतलब पहले इतना था, अभी जरा बढ़ गया ज्ञान, ज्ञान का क्षमक्षम अधिक हो गया, तो हम क्या कहेंगे उसमें निमित्त कौन था? कि हमने स्वाध्याय चालू किया ना, तो हमको बहुत अभी थोड़ा सा नॉलेज हो गया। तो यहां ये समझा रहे हैं, तेरे ज्ञान में जो कोई बढ़ोतरी हुई है वह स्वाध्याय के कारण से नहीं, ये ज्ञान का उस रूप परिणमन होना था, तब स्वाध्याय का जो कोई वाचन हो गया, तेरा सुनना हो गया, वह तेरे निमित्त है। अभी उनको कह रहे आप समय सारी क्यों पढ़ते हो, तो इसका अर्थ आपने ऐसा लिया कि समय सार से ज्ञान होता है, यानी तेरा ज्ञान इतना परावलंबी है कि दूसरे ने धक्का दिए बगैर वो आगे बढ़ता ही नहीं है। ख्याल में? तो यहां तो समझा रहे, देखो भाई एम न थी, आप जो कह रहे उस तरह का नहीं है, वाचती वक्ते यानी मैं पढ़ा रहा हूं समझो, के सांभळती वक्ते यानी आप सुन रहे हो, जे ज्ञाननी पर्याय थाय छे, कोना ज्ञाननी? वाचवा वाला ना अने सांभळवा वाला बनने ना, हाँ दोनों के ज्ञान है ना, क्या? नहीं नहीं, पढ़ने वाले का तो उसने 10 बार पढ़ा, अभी क्या है उसके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। ये पढ़ाने वाले के भी ज्ञान में फर्क आने वाला है, और पढ़ने वाले के यानी सुनने वाले के ज्ञान में भी जो फर्क आ रहा है, ते पोता ने लई ने स्वयं पोताती थाय छे, यानी मारा ज्ञाननी जे पर्याय थाय छे ए बीजाना कारणे नथी थती, पोताने स्वयं ने कारणे थाय छे, निमित्तने लईने नहीं, यानी आप नियम सा क्या समयसार कह रहे, तो उसके कारण से अन्य के ज्ञान में कोई फर्क नहीं हो रहा है। अब जिनके जिनके कोई फर्क हो रहा है ऐसा समझ रहे हैं, वो अपने स्वयं के कारण से हुआ है, निमित्त से नहीं। ज्ञाननी पर्याय ना उत्पादनो स्वकाळ छे, अभी हर एक के ज्ञान की पर्याय का बात लेना। एनी निजक्षण छे, अभी जिसको हमने जन्म क्षण में यह शब्द लिया था, यानी स्वयं का अपना अपना निजक्षण है, उस समय जो हम कहते ना कि जिस समय जो द्रव्य की जो पर्याय होनी है वही होगी, अन्यथा कोई नहीं होगी, तो वह जो होने वाली जिस समय जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जो होने वाली पर्याय है, वह पर्याय का जन्म क्षण वैसा है, तो बाहर से निमित्त भी आएगा, ये भी होगा वो भी होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। तो कहते एनी निजक्षण छे एटले ते पर्याय स्वतंत्रपणे पोताती उत्पन्न थाय छे। भाई
तो वो ज्ञान की पर्याय पद्म पुराण सुनकर भी होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? पर छे बराबर, ज्ञान ज्ञान से होता है, तो ज्ञान ज्ञान से होता है तो पद्म पुराण पढ़कर भी होना चाहिए था ना, क्यों नहीं? उसका उत्तर हमें वो सिद्धांत में चाहिए।
हाँ बोलो मिली भाई।
ठीक है ना, तो समय सार अन्य द्रव्य है कि नहीं है? तो आपने निमित्त से हुआ माना,
उस समय जो ज्ञान की योग्यता उससे ज्ञान हो रहा है,
बरोबर मान्य है, तो उससे ज्ञान हो रहा है तो सामने पद्म पुराण क्यों नहीं है, समय सार क्यों है? देखिए जो पर्याय निश्चित है तो निमित्त भी निश्चित ही है, क्योंकि निमित्त नाम का द्रव्य भी अपने में परिणमन कर रहा है।
देखो मैंने ये बात भी बात बताई थी, जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस सारे द्रव्यों में जिस निमित्त से जो कार्य होना है।
हम तो ऐसे समझते रहे, अरे वो तो मरना था बेचारा, क्या करे, अमेरिका में गया था घूमने के लिए, यहाँ होता तो अच्छा, या कोई एक्सीडेंट में मरता, अरे अरे बेचारा एक्सीडेंट से मरा, अरे अरे बेचारा बीमारी से मरा, घर में रहता तो नहीं मरता। ऐसा नहीं है, मरण भी निश्चित है, उसका निमित्त भी निश्चित है,
जगह भी निश्चित
और उसका क्षेत्र भी निश्चित है, काल भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है।
हाँ।
ख्याल है ना,
हमारी मम्मी कितनी चिंता कर रही थी, दिल्ली गया मेरा बेटा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होना है।
ख्याल है ना, ये जिस कार्य का जो निमित्त है वो भी, और वो किसी के लाने से नहीं आने वाला है, वो स्वयं अपनी योग्यता से वहाँ, निमित्त नाम का जो द्रव्य है, इस द्रव्य की अपेक्षा उसको निमित्त कहा है, पर वो स्वयं में अपनी उपादान से कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भाषा वर्गना स्वयं अपने निमित्त से, अपने उपादान से वहाँ परिणमित हो रही है, शब्द रूप परिणमित हो रही है, उपदेश रूप परिणमित हो रही है भाषा वर्गना, तो वो भी उस समय वैसे ही परिणमित होगी, और उसको सहज इस द्रव्य में एक ज्ञान की पर्याय में जो उपादान से हो रहा है उसमें उसको निमित्त कहेंगे। दोनों कार्य एक समय में है ना।
देखो अभी हम, आप कह रहे हैं ना पद्म पुराण क्यों नहीं, तो अभी हम सुबह की बात लेते हैं, अपने यहाँ जो रोज चलती है ना, तो आपके ज्ञान का उघाड़ करना नियोग संबंधी होना था तो यहाँ धवला बांचा जा रहा है। हाँ? तो ये तो भाई आपके ज्ञान क्या, और पढ़ाने वाले का कहो या पढ़ने वालों का कहो, आप हमारा सबका इस तरह का ही ज्ञान का परिणमन होना है, तो वैसा वहां निमित्त मिल रहा है, तो वो धवला से ज्ञान हुआ करना नियोग का ऐसी बात नहीं है। अब बात ख्याल में आ गई ना,
तो सभी द्रव्यों की वैसी परिणति चल रही है। पहले कुछ काल पहले तो धवला तो बस वो ताल पत्र पर ही खाली था और वो दर्शन मात्र अवेलेबल था, अभी तो पुस्तक रूप से होना, अभी वो पुस्तक के पीछे कितने ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है कि उसका अर्थ करने के लिए, ख्याल है ना, तो अनेक पंडितों ने उसके पीछे इतनी मेहनत की है, उसका वैसा वैसा परिणमित हो गया, वो उसकी पुस्तक रूप से बाहर आ गई, कभी कभी तो पुस्तकें भी आउट ऑफ प्रिंट होती है, आपके हाथ में वो आ गई, ख्याल है। अब ऐसे किसी को हमको विचार भी हुआ चलो इस पर स्वाध्याय करेंगे, तो ये तो किसी के लाने से नहीं लाया गया। तो ये सारा जो है ना, ये जो सहजता है उसके पीछे की, और हमारी अपनी अपनी ज्ञान की पर्याय उस रूप होने थी, तो कहने में तो निमित्त से कार्य हुआ ऐसा कहेंगे हम कहने में, परंतु उसके पीछे का ये रहस्य हमको सिद्धांत जानना जरूरी है।
जब तक निमित्त की बात बोलता हूँ तो आउट ऑफ द वे है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली अरविंद भाई, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जब हमारे मन में ऐसा परिणाम हो गया, सबके स्वाध्यायी लोग जो है, कि हम धवला पढ़ना चाहिए, हमने कांटेक्ट किया तो 16 के 16 भाग उपलब्ध थे। अब हमने चालू किया समझ लो एक साल पहले, आज के तारीख में हमारे शरद भाई को 16 के 16 भाग चाहिए थे, उनको सिर्फ मिले 11, फिर जरा उसने कोशिश की तो मिले 12, 4 अनुपलब्ध हैं उनके लिए, मिलेंगे घबराना नहीं, दरवाजो खुली जैसे। कहने का मतलब यह है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने विचार किया।
सोलापुर में रहने वाले विक्रांत पंडित ने कहा था आपको 16 के 16 भाग कैसे मिल सकते हैं, हो ही नहीं सकता ये बात, क्योंकि वो तो सभी एक साथ तो मिलते ही नहीं है, कितनों को
कभी नहीं मिलते। एक खत्म हो गया तो दूसरा छप गया, दूसरा छप गया तो पहला खत्म हो गया, और हमें तो कितने करीबन 20 सेट हमने मंगवाए थे। चलो अच्छा है, ये ऐसा होता है कि निमित्त सहज हाजिर हो जाता है, जब यहाँ उपादान स्वयं जागरूक होता है, यानी उसका उपादान अभी पक्व हो गया है तो उस समय निमित्त सहज मिल जाता है। चलो तो यहां ये ही समझा रहे हैं कि ते पर्याय स्वतंत्रपने पोताती उत्पन्न थाय छे, बीजाती थती नथी। भाई आ तो वितराग परमेश्वर जिनेश्वर देवना दरबारनी वातो छे। भगवाननी दिव्यध्वनि छूटी ते जीवोनो उपकार करे छे एम कथन आवे छे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मा अधिकार आठमा आवे छे के तीर्थंकर गणधरादि मोक्ष मार्गनो उपदेश आपी जीवो उपर उपकार करे छे। आवा कथनो व्यवहार थी केवामा आवे छे। बाकी कोई कोई नो उपकार करे ए वात वस्तु स्वरूप मा नथी। जे अपेक्षा शास्त्र मा कथन आवे तेनो भाव बराबर समझवो जोइए। और ये भाव समझने के लिए हमें मूल स्वरूप पहले समझ में आना चाहिए। समयसार शास्त्र ना कलश 43 मा आचार्य देव आश्चर्य ने खेद प्रकट करी कहे छे के अरे रे अज्ञानी ने स्वपरना एकपना नी भ्रांति केम नाचे छे। आहा क्या राग दुख नो कुवो अने क्या भगवान आनंद नो नाथ। छता बन्ने ने एक मानवानो मोह तने केम नाचे छे। आवो निस्पृह करुणानो विकल्प ज्ञानी ने आवे छे पण तेने ते दुखनुं कारण जाने छे। ये क्या है, ये करुणा 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 जो है ना, वो लोगों को इतना परिचित शब्द हो गया है कि पंडित लोग भी, आप करुणा योग सिखाते हैं ना, क्या कहते हैं, आप करुणा नो योग सिखाते हैं ना, तो हमें उनके ऊपर करुणा आती है कि करुणानुयोग को करुणानुयोग कहते हैं। भले भले लोग कहते हैं, क्या करे, ये करुणानु को यार शू कहे छे, जो आवो निस्पृह करुणानो विकल्प ज्ञानी ने आवे छे। निस्पृह याने कोई उस याने उसके अगेंस्ट कोई उसको मोहबदला नहीं चाहिए कि मैं इनको सिखाऊं और मुझे कुछ मिले। निस्पृह करुणा एवो पन तेने ते दुखनु कारण जाने जाने, उनके भी दूसरों को समझाने के शुभ भाव आएंगे लेकिन वो भाव कैसे, निस्पृह भाई हम आपको सुबह से लेकर शाम तक सिखाते हैं और आप हमको एक बार का खाना भी नहीं देते, वो भाषा उनकी नहीं होगी, वो विचार भी नहीं होंगे, वो निस्पृह भाव थी कहे छे। निस्पृह करुणा नो विकल्प ज्ञानी ने आवे छे पन तेने ते दुखनु कारण जाने छे। और वो आता है वो जान रहे और मान रहे कि अरे रे ये तो दुखरूपी है, नित्य अनाकुल स्वभावी एक आत्मा ज दुखनु अकारण छे। अनाकुल स्वरूप नित्यानंद प्रभु रागनु आकुलतानु कारण केम थाय, ते रागनु आकुलतानु कार्य केम करे। देखो यहाँ क्या कह रहे, आत्मा अनाकुल स्वभावी है तो आकुलता रूप कार्य कैसा करेगा, यानी राग जो है उसका कर्ता आत्मा नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई ना। अने परने कारण बनावी पोताना कार्य केम करे। आहा हा कार्य कारणत्व शक्ति वड़े ते परनु कारण पन नथी अने परनु कार्य पन नथी। त्यारे वड़ी कोई कहे छे के आत्मा ने पर पदार्थनो कर्ता न माने ते दिगंबर नथी। ये जो दो तीन बातें हैं ना, तो उन्होंने यहाँ जो सामने से उनको जो कोई आरोप आए हैं, ऐसे पहले एक बात गई थी मैंने बोली नहीं अभी इसमें, ये भी निमित्त नहीं थतु नथी, ये समयसार वाली जो बात है ना, वो भी बहुत लोग उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते थे। वैसे ये दूसरा नंबर का ऑब्जेक्शन क्या है कि आत्मा ने पर पदार्थ नो कर्ता न माने, क्योंकि देखो ये बात जो है ना, स्वामी जी ने पहले लोगों के समक्ष रखी कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। तो ये स्वामी जी कैसे, वो तो पहले संप्रदाय में थे अन्य, वहां से हटकर वो दिगंबरत्व उन्होंने धारण किया और वहां ये शास्त्र आदि पढ़कर स्वयं आत्मानुभूति हुई, तो ये बात बिल्कुल साची है ऐसा जानकर लोगों के सामने प्रस्तुत की। तो सबके मतलब क्या बोलते हैं, सब लोग हलचल हो गई सब में, क्या रे हम आज तक जो कह रहे थे इससे सारी विरुद्ध बात है। तो फिर उन्होंने क्या उठाया कि आत्मा ने पर पदार्थ नो करता न माने ते दिगंबर नथी, क्योंकि ये जो बात है दिगंबरों में नहीं है, ये कहीं बाहर से नहीं है, तो कहने वाला ही दिगंबर नहीं है। अरे तूने किसको पूछा था हमको डिग्री देने के लिए, हाँ क्या हम तेरे से पूछ रहे थे कि हम दिगंबर आने, हमने दिगंबर बनाओ बनाओ, कुछ नहीं है ऐसे, वो कहीं किसके पास गए नहीं थे, स्वयं को घोषित कर दिया। अरे जो मुनि पद में थे वो मुनि पद त्याग करके आवे तो ग्रस्त छे, ऐसा बोलते थे, ख्याल में तो ये समझा रहे हैं। तो उनके ऊपर वड़ी कोई कहे, ये कोई कहे वाला समझ लेना, अरे प्रभु आ तो शू कहे छे, प्रभु तने आ शू थियू छे, अरे देखो कितनी करुणा है, करुणा नहीं है कितनी करुणा है। अरे परमागम ने आवी स्पष्ट वात तारा लक्ष्मा केम आवती नथी, अरे दुख ना ऊंडा कुआ मा दुखती घेरायला तने संतो दुखती मुक्त थवानो अलौकिक मार्ग बतावे छे ते तने केम बेसतो नथी, यानी वाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट, ऐसा पूछ रहे। भाई राग नो आकृतारू भाव पर्यायनी योग्यता ना काले स्वयं सिद्ध पोता ने लईने थाय आत्मा तेनु कारण नथी। व्यवहार रत्नत्रयनो शुभ राग पण आकुलता जनक छे, चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा एनु कारण केम थाय, ए दुखरूप भाव ते त्रिकाळी आत्मा नु कार्य केम थाय, शू आनंद ना नाथ नु कार्य काई दुख होय, कदी न होय, आहा हा आनंद ना नाथ नु कार्य पन आनंद ज होय। देखो यहाँ इतने सारे जो प्रश्न पूछे ना एक के बाद एक के बाद, तो उसके उत्तर भी उसमें गर्भित है, और वो प्रश्न पूछ के ही सामने वाले को चित कर देते हैं। पर्याय मां जे आनंद आए वो ते अंदर आनंद स्वभाव पड़ियो छे त्यांथी आए वो छे, रागनी मंदता ने लईने आनंद आव्यो छे एम बिल्कुल नथी, व्यवहार कारण अने निश्चय कार्य ए वातनी आई स्पष्ट ना पाड़े छे। यानी यह व्यवहार कारण ने राग यह कारण और वितरागता यह कार्य ऐसा कभी भी नहीं होता है। भाई मांड आवी शुद्ध तत्वनी वात बार आवी छे तो साची श्रद्धा कर, चारित्रनो दोष भले हो पन श्रद्धा मा तो आ वात हर्ष भेर स्वीकार, यानी हर्ष सहित स्वीकार, आ समझा विना एक डगलू ए धर्म पंथे नहीं जवाय, एक डगलू यानी एक कदम भी तू धर्म के पंथ पर यानी मोक्ष मार्ग में तू आगे अग्रेसर नहीं हो सकता है। आत्मा परनु कार्य कने अने एनो करता थाय ए वा जिन शासन नी नथी, चैतन्य स्वभाव नित्याना कुण आनंद स्वरूप छे ते कोईनु कार्य नथी, अर्थात रागनी मंदता थी निश्चय निबजो छे एम नथी। जारे कोई कहे के आ तो त्रिकाळी द्रव्य नी वात छे, तेने आई कहिए छे के द्रव्य नो जेमा निर्णय थयो ते पर्याय छे, ए प्रकटेली पर्याय एम जाने छे के आत्मा आनंदनी मूर्ति चिदानंद घन प्रभु रागनु कारण नथी, रागनु कार्य पण नथी, राग रागना कारणे थयो छे अने आनंद आनंदना कारणे। त्यारे ते कहे छे के रागनु कारण जड़ कर्म छे तो ए वात एम पण नथी, निमित्त थी निमित्त निमित्तमां स्वतंत्र छे अने राग रागना कारणे स्वतंत्र थाय छे। आहा हा गजब वात छे, कोई जड़नी अवस्था के रागनी अवस्थानु आत्मा कारण नथी। अब यहां रुकते हैं, चावानी के ज्ञान से सूझे